उत्पन्न होते हैं। अतः इस कालकूट से ब्रह्मचारी को बड़ा सावधान रहना चाहिए। शराब तो साक्षात विष है। शराबी अक्सर व्यभिचारी होता है। उसे धर्म, नीति, सदाचार का ज्ञान कहाँ। शराब की उत्तेजना में मनुष्य पशु से भी बदतर हो जाता है और अपने मनोवेगों का गुलाम बन जाता है। शराब से स्मरण शक्ति पंगु हो जाती है और उसके बिगड़ते ही कल्पना, मनन, विवेचन, ध्यान, निर्णय आदि सूक्ष्म मानसिक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। मन अश्लील कल्पनाओं से भर जाता है, स्नायु निर्बल हो जाते हैं और उनकी शक्ति कम होते ही एकाग्रता, चिंतन और निर्णय शक्ति पंगु हो जाती है। चाय को लोग साधारण पे समझते हैं, किंतु साधारण दिखने वाली यह चीज भी दुष्परिणामों से भरी है। इससे जीवन शक्ति का ही नाश नहीं होता, प्रत्युत स्नायुओं की क्षणिक उत्तेजना से इसका नैतिक प्रभाव बड़ा पड़ता है। जो व्यक्ति अधिक चाय पीते हैं वे प्रायः चिड़चिड़े, क्रोधी, अग्रिमांद्य और अजीर्ण के शिकार, शारीरिक दौर्बल्य से ग्रस्त रहते हैं। अतः इसे त्याग देना चाहिए। भांग, गांजा, चरस प्राचीनता प्रेमी व्यसनियों की प्रिय वस्तु है। साधु संत वैरागी मंदिरों में रहकर इन व्यसनों का प्रयोग करते हैं। ब्रह्मचारी यदि इनकी संगति में बैठे तो उसे कहीं उनकी देखा देखी उन लोगों का अनुकरण न करने लगना चाहिए। व्यभिचार एक ऐसी सुंदर और आकर्षक शक्ति वाला दैत्य है जो अपनी सुंदर मूर्ति से लोगों को मौत के घाट उतारता है। आज समाज में जो विषय लुलुपता दिखाई देती है, जो पापाचार फैला हुआ है, उसका एक कारण उत्तेजक कामवासना को जगाने वाला दूषित साहित्य है। व्यभिचार से सावधान रहने को भी लेखक इस ढंग से लिखते हैं कि पापों से सावधान होने के बजाय उस ओर और प्रवृत्ति होती है। ऐसे पतित साहित्य से ब्रह्मचारी बड़ा सावधान रहे। व्यभिचार के कई कारण हैं, जैसे घर का गंदा या बुरा वातावरण, बुरी सोहबत, कुसंगति, नौकरों की संगति, दुष्चरित्र पाठक और छात्रालयों के संचालक, सिनेमा, नाटक, समाज की अश्लील गालियां, अश्लील गाने, होली, कजली इत्यादि। अनेक व्यक्ति मनोविनोद के लिए कौतूहलवश व्यभिचार के शिकार बनते हैं। ब्रह्मचारियों, इस पाप से सावधान। इसमें कहीं ना फांस जाना, अन्यथा सरदर्द, बदहजमी, रीढ़ की बीमारियां, मिर्गी बहुमूत्र, पक्षाघात, वीर्यपात, स्वप्नदोष, नपुंसकता, क्षय, पागलपन और अंततः मृत्यु के शिकार बनोगे। इन सब रोगों का प्रधान कारण वीर्यपात है। वीर्य की रक्षा करो, इन सबसे मुक्त हो जाओगे। अस्वाभाविक वीर्यपात बलवृद्धि, प्रतिभा, स्वातंत्र्य भावना का नाशक है। अतः सावधान। गुप्तांगों का श्रोच। गुप्तांगों के स्पर्श से मन में काम वासना का उद्रेक होता है। अनेक व्यक्ति गुप्तांगों की उचित सफाई नहीं करते, अतः उनमें मैल जमा हो जाता है और खुजली होती है। खुजली करने से इंद्रियों में उत्तेजना होने लगती है, मन गर्हित विचारों से भर जाता है और गुप्त वासना जागृत हो जाती है। जननेन्द्रिय में शरीर की तमाम कोमल नसें इकट्ठी होती हैं, अतः उनका श्रोच ब्रह्मचारी के लिए अति आवश्यक है। अशुचि स्थानों का स्पर्श न कीजिए, न उसकी ओर दृष्टिपात ही कीजिए, अन्यथा मन में वासना का उद्रेक हो जाएगा। काम रिपु जागृत होने पर आप अपने को न संभाल सकेंगे। गुप्तांगों को देखने मात्र से ही वासना का तांडव प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि गंदे विचारों से इंद्रियां क्षुब्ध हो जाएंगी। स्नान करते समय साबुन से सफाई से धो डालिए, श्रोच के समय भी स्वच्छता से धो डालने की आदत बनाओ। मैल एकत्रित न होने दीजिए। हमारे पूर्व पुरुषों, ऋषि मुनियों ने मूत्र त्याग के समय तक जल ले जाने की आज्ञा दी है। इसका उद्देश्य यही है कि मूत्र त्याग के पश्चात इंद्रिय स्नान करा दिया जाए, मूत्र के कण उसमें न लगें। मलमूत्र त्यागने के पश्चात स्वच्छता से हाथ पांव धोने चाहिए। श्रोच क्रिया में काफी पानी ले जाइए। गुप्त इंद्रिय की त्वचा में मल एकत्रित न हो जाए, यह ध्यान रखिए। ठंडे जल से गुप्त इंद्रिय को स्नान करा देने से मन शांत हो जाता है, समस्त वासनाएं दब जाती हैं और मन पर काबू हो जाता है। ब्रह्मचारी को उचित तो यही है कि टट्टी के पश्चात स्नान करे, किंतु यदि यह संभव न हो तो कम से कम वस्त्र बदल लेना चाहिए। मिट्टी से हाथ धोने के पश्चात पुनः एक बार साबुन से स्वच्छता पूर्वक हाथ धोने चाहिए। मूत्र त्यागने के पश्चात ठंडे जल से इंद्रिय स्नान अवश्य करना चाहिए। इसके द्वारा आप अपने विकार, आसुरी विचार, मनोवेगों, राक्षसी कल्पनाओं को वश में कर सकेंगे। ब्रह्मचारी को इंद्रिय स्नान, स्वच्छता और गुप्तांगों की उचित सफाई का ध्यान रखना चाहिए। सत्यव्रत जी लिखते हैं, जननेन्द्रिय को परब्रह्म की उत्पादक शक्ति का चिन्ह समझना चाहिए। उसकी ओर जाते ही दैवी भावों का उदय होना चाहिए। इंद्रिय स्पर्श कभी न करना चाहिए। ऐसे कार्य की ओर कभी भूलकर भी ध्यान नहीं देना चाहिए जिसे खुले करते हुए हृदय में पाप की लज्जा तथा भय की आशंका होती है। ऐसा कार्य सदा पापमय होता है, यही पाप की पहचान है। इस समय हृदय में परमात्मा की मातृशक्ति का ध्यान करते रहना चाहिए। आपके शरीर का प्रत्येक अंग पवित्र हेतु से बना है। उसमें दैवी शक्तियों का अस्तित्व है। गंदगी के लिए कहीं भी गुंजाइश नहीं रखी गई है। इंद्रियों की स्वच्छता पर मन की स्वच्छता, आत्मा की स्वच्छता निर्भर है। इंद्रिय अंग प्रत्यंगों की अशुचिता का स्पष्ट परिणाम निंद्य वासना में विचार, कुत्सित कल्पनाओं की वृद्धि और अंततः वीर्य नाश है। गुहेन्द्रिय को हर प्रकार से स्वच्छ रखना सीखिए। उसे शीतल जल से मलमूत्र त्याग के पश्चात धोया कीजिए। इंद्रिय स्पर्श के समय ब्रह्मचारी अधिक घर्षण न करे, अन्यथा उत्तेजना होनी संभव है। ठंडे जल से इंद्रिय स्नान कराने से सब नसों में शीतलता रहती है, इंद्रियों की चंचलता नष्ट होती है और मन शांत और उत्फुल्ल रहता है। चूंकि वासना का संबंध गुप्तेंद्रिय से है, अतः उसके श्रोच स्वच्छता निर्मलता की बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। शरीर को बलवान बनाइए। बलवान शरीर आध्यात्मिक उन्नति और ब्रह्मी जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। बलवान शरीर से आत्मा बलवान बनती है। मन प्रसन्न रहता है और मनोद्वेगों को रोकने, चित्तवृत्ति के निरोध करने में सहायता मिलती है। बलवान व्यक्ति काम के दैत्य भावों, पाश्विक वृत्तियों, वासना और दूषित विकारों का दृढ़ता पूर्वक दमन कर सकता है। कमजोर व्यक्तियों को कामदेव पटक पटक कर मारता है। आसुरी विचार नाच नचाते हैं, मन चंचल रहता है। उसके विकार बलवान होते हैं और इच्छा शक्ति पंगु बन जाती है। उच्च और पवित्र दिशाओं में चित्त वृत्तियों को एकाग्र करने के लिए ब्रह्मचारी का बलवान शरीर चाहिए। ब्रह्मचारियों, मजबूत बनो, अंग अंग को व्यायाम से दृढ़ करो, अणु अणु में जीवन शक्ति भर लो। शक्तिशाली ब्रह्मचारी के पास मन को चंचल करने वाला, अंतस्थल को अशांत करने वाला, प्रचंड विकारों के वशीभूत करने वाला कोई मानसिक राक्षस नहीं आ सकता। अपनी परिस्थिति, शक्ति और हैसियत के अनुसार प्रत्येक ब्रह्मचारी व्यायाम चुन ले। सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, आसन, दंड बैठक, डंबल, तैरना, कूदना, श्वास प्रश्वास की कसरतें चुन लेनी चाहिए। सूर्य नमस्कार के व्यायामों द्वारा सूर्य की रश्मियों द्वारा प्राण तत्व हमारे फेफड़ों में प्रवेश करता है। श्वास प्रश्वास द्वारा फेफड़ों की अच्छी कसरत हो जाती है। प्राणायाम द्वारा आनंद, बल, नवस्फूर्ति मिलती है। आलस्य में न रहें। जो कुछ भी हो सके थोड़ा बहुत व्यायाम अवश्य करें। जो सारे दिन आलस्य की केंचुली में बंद पड़ा रहेगा, वह भला किस प्रकार ब्रह्मचर्य स्थित रख सकता है। ब्रह्मचारी तो स्वस्थ, कुशाग्र, बुद्धिमान, स्फूर्तिमान होता है। शारीरिक बल से उसे आत्मबल प्राप्त होता है। नियमित व्यायाम करने से हमारी समस्त नीच इंद्रियां फीकी पड़ जाती हैं और पाप वासनाएं तत्काल दब जाती हैं। रक्त का प्रवाह प्रत्येक अंग में तीव्र गति से होने लगता है। नियमित व्यायाम करने वाले पहलवान पूर्ण शांत, निर्विकारी, ब्रह्मचारी और दीर्घजीवी रहते हैं। व्यायाम आत्मोद्धार का गुप्त उपाय है। इस अमृत संजीवनी का उचित प्रयोग होना चाहिए। ब्राह्म मुहूर्त से लाभ उठाइए। कवियों ने ब्राह्म मुहूर्त को लेकर मधुर कल्पनाएं की हैं। प्रातःकालीन सुखद समीर सुरम्य सरोवरों, उषा की रस भरी आभा और स्वनमयी रश्मियों की थिरकन के जो गीत गाए हैं, वे नितांत सत्य हैं। सूर्योदय का आगमन जीवन, बल, आशा, उत्साह, नवजीवन का द्योतक है। सूर्य भगवान की प्रथम किरण के स्पर्श मात्र से समस्त प्रकृति गदगद हो चारों ओर सुगंधित सौरभ, मतवाली महक अलौकिक आनंद, सुमधुर गुंजन, अनूठी कांति बिखेरती फिरती है। चाणक्य नीति में कहा है, सूर्योदय के समय सोने वाले, चाहे वह चक्रधारी विष्णु ही क्यों न हो, लक्ष्मी छोड़ देती है। संसार के प्रायः सब दीर्घजीवी महापुरुष, बड़े बड़े योगी मुनि, तपस्वी सूर्योदय से पूर्व ब्राह्म मुहूर्त में उठने के अभ्यासी थे। बाल सूर्य की प्रथम रश्मियों को नेत्र पर लेना, सूर्य को अर्घ्य देना, सूर्योदय के समय दर्शन करना इसी महत्ता के द्योतक हैं। इस मंगलमय समय को ब्राह्म मुहूर्त कहा गया है। ब्राह्म मुहूर्त सूर्योदय से डेढ़ घंटे पूर्व होता है। ब्रह्मचारी को ब्राह्म मुहूर्त में शैया त्याग कर शौचादि नित्य कर्मों से निवृत्त होना अनिवार्य है। कहा है, ब्राह्मी मुहूर्ते बुद्धेत स्वास्थ्यो रक्षार्थमायुषः तत्र दुःखस्य शान्तर्थे स्मृधि मधुसूदनम्। अर्थात स्वस्थ मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन की रक्षा के निमित्त ब्राह्म मुहूर्त में उठ जाए तथा दुःखनाश के लिए भगवान का भजन करे। ब्रह्मचारी को जल्दी सोने और जल्दी उठने का अभ्यास होना चाहिए। प्रातःकाल आलस्य में बिस्तर पर पड़े रहने में अनेक प्रकार की कुत्सित वासनाएं हमें अशांत कर देती हैं, मनोवृत्तियां अनुचित मार्गों की ओर आसानी से प्रवृत्त हो जाता है। कामवासना प्रायः ऐसे ही व्यक्ति को तंग करती है जो आलस्य में अधजगे शैया पर पड़ा रहता है। काम, क्रोध, आलस्य निद्रा, मैथुन, इनमें ज्यों ज्यों अधिक फंसो, त्यों त्यों ये अधिकाधिक सताते हैं। स्वामी शिवानंद जी ब्राह्म मुहूर्त के विषय में लिखते हैं, प्रातःकाल को अमृत बेला कहा गया कहते हैं। सचमुच सृष्टि के इस प्रातःकालीन दिव्य अमृत को त्यागने वाला पुरुष जल्दी ही वृद्ध एवं मृत के तुल्य हो जाता है। हमारे ऋषि मुनि इसी अमृत का नित्यशह ब्राह्म मुहूर्त में यथेष्ट सेवन कर इतने चंगे और चैतन्यमय बने हुए थे, रात भर के आराम के कारण प्रातःकाल में संपूर्ण शक्तियां अत्यंत सतेज और बलिष्ठ रहती हैं। ऋषि ब्राह्म मुहूर्त में उठकर सर्वप्रथम शक्तिमान परमात्मा का ध्यान करते थे, जिससे परमात्मा की शक्ति प्रवेश करती थी और बड़े बड़े राजा भी उनके सामने सिर झुकाते थे। यदि हम चाहते हैं कि हमारे संपूर्ण काम, क्रोध, अंतर्बाह्य शत्रु हमारे सामने सिर झुकावें और संसार में हमारी कीर्ति हो, तो हमें प्रातःकाल उठने का अभ्यास डालना चाहिए। पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि रात्रि में मनुष्य अपनी दूषित वायु कार्बोनिक एसिड गैस को बाहर फेंकता है और इसी दूषित वायु को ग्रहण कर वृक्ष प्राणवायु ऑक्सीजन को छोड़ा करते हैं। अतः वैसे समय शुद्ध वायु प्राप्त होती है। इस स्वस्थ वायु से सब दिशाएं व्याप्त होती है और वह श्वासोच्छ्वास द्वारा फेफड़ों में जाकर फेफड़ों के समस्त विकारों को दूर कर शरीर में प्राण संजीवन कर हमें निरोग रखता है। ब्राह्म मुहूर्त की वायु में बुद्धि विकास का परिणाम अधिक मात्रा में विद्यमान रहता है, रक्त की स्वच्छता एवं गति बढ़ जाती है और मस्तिष्क पुष्ट बनता है। सर वाल्टर स्कॉट का कथन है कि प्रातःकालीन वायु स्मरण शक्ति और कल्पना शक्ति में आश्चर्यजनक तीव्रता एवं सजगता उत्पन्न करती है, नए नए विचार पैदा कर उल्लास, उत्साह और उत्फुल्लता की अभिवृद्धि करती है। इस शरीर का आत्मा से क्या संबंध है? सब जीवों के साथ परमात्मा को क्या सरोकार है? शैया से उठते ही पहले इस तत्व पर मन केंद्रीभूत कीजिए। तत्पश्चात जगत में कल्याण भरा है, यह सोचिए। फिर शौचादि से निवृत्ति हो पूजन भजन गीता पाठ कीजिए। फिर जो ओम भूर्भुवः स्वः इन तीनों को प्रकाशित करने वाले और आम चैतन्य का विकास करने वाले हैं, उन परमदेव परमेश्वर का स्मरण करते हुए घूमने निकल पड़िए। आपकी मुख कांति द्विगुणित होगी, बुद्धि का विकास होगा, पवित्र विचार, पवित्र रक्त और पवित्र चिंतन से आप में नई स्फूर्ति का संचार होगा। मन के विकल्प वासनापूर्ण इच्छाएं, चंचल मनोवृत्तियां नष्ट हो जाएंगी। प्रातःकाल जल्दी उठने के लिए यह आवश्यक है कि जल्दी ही सोया जाए। 12 बजे के पहले की एक घंटा नींद बाद के 2 घंटों के बराबर होती है। ब्रह्मचर्य रक्षा के लिए 10 बजे उससे पूर्व ही सो जाए और प्रातःकाल 4 बजे शैया त्याग कर दें। प्रातःकाल हम आलस्य में पड़े रह जाते हैं तो स्वप्नदोष हो जाता है। स्वप्नदोष अंतिम पहर में होता है। मूत्र त्यागने में जहां आलस्य हुआ कि स्वप्नदोष हो जाता है, अतः 4 बजे ही उठ बैठना चाहिए। जो व्यक्ति ब्राह्म मुहूर्त में पड़े पड़े खुर्राटे लेते हैं, अल्पायु, आलसी, दरिद्र, हठी और बुरे विचार वाले बनते हैं। ब्रह्मचारी का सोना जागना नियमित होना चाहिए। प्रातःकाल उठकर मन में इस प्रकार के भाव रखने चाहिए, गर्हित वासनाएं, कामोत्तेजक विचारधाराएं मेरी मन शांति को भंग नहीं करती। सांसारिक माया, मोह, प्रपंच, व्यर्थ के धुओं में फंसकर मैं अपने हृदय की शांति को नहीं खोता। मेरा मन स्वस्थ है, चित्त समतोल है, हृदय में भक्ति प्रेम और शांति का स्रोत खुल गया है। मोह, काम, शंका, भय, शोक और वासना की तरंगे मेरे मानस सरोवर में अंतर्द्वंद्व नहीं मचा सकती। मैं उद्वेग और मनोवेगों पर पूर्ण नियंत्रण रखता हूँ। कोई पवित्र भजन गुनगुनाते हुए उठिए। अपने आप को वीर्यवान होने के संकेत दीजिए। यदि हम अपने आप को वीर्यवान कहेंगे, समझेंगे, वैसा ही उच्चारण करेंगे और वैसा ही अभिनय करेंगे, तो हम अनायास ही वीर्यवान बनते जाएंगे। अतः इसी प्रकार का भाव हमें प्रातःकालीन स्तुति प्रार्थना में लाना चाहिए। ब्रह्मचारी को प्रातःकाल उठते ही 2-4 भजन अत्यंत प्रेम से गाने चाहिए। उत्तमोत्तम भक्तिपूर्ण पदों का पाठ करने से दैवी तेज प्रकट होता है और समस्त दुश्चिंताओं का नाश होता है। अतः आप ब्रह्मचर्य धारण का दृढ़ संकल्प मन में रखकर शुभ संकल्प से अपना दिन प्रारंभ किया कीजिए। ये पवित्र भजन शिव संकल्प, शुभ भावना, स्थूल रूप में मूर्तिमान होकर प्रकट होंगे। हम अपने गुप्तमन में जिन चित्रों की सृष्टि करते हैं, वे व्यवहार में स्थूल रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए वेद में कहा गया है, साधको, तुम्हारी कल्पना सदा सर्वदा शिव संकल्पमयी हो, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अपने अंतःकरण में पवित्र अनंत स्वरूप परमात्मा के मानसिक चित्र की रचना किया करो। कामवासना को भूखा मारिए। उपवास आत्मशुद्धि का सर्वोत्तम उपाय है। आयुर्वेद में कहा है, अग्नि आहार को पचाती है और उपवास दोषों, वासना, कुत्सित कल्पना, आंतरिक विकार को पचाता अर्थात नष्ट करता है। उपवास हमारे शरीर का एकत्रित मल निकालता है, मानसिक मल भी दूर होता है। जब हम अनेक प्रकार के भोजनों से उदर को भर लेते हैं, तो मन की चंचलता और बढ़ जाती है। भरे पेट पर हमें शरारत की सूझती है। प्रकृति ने दोष निवारण की जो विधियां निकाली हैं, उपवास उसमें सर्वोत्कृष्ट है। उपवास की रोग तथा मन का मैल दूर करने की शक्ति पर प्राचीन ऋषि मुनियों को बड़ी श्रद्धा थी। अब धीरे धीरे लोग उपवास के महत्व को मानने लगे हैं। ब्रह्मचारी के लिए मास में दो उपवास एकादशी यथेष्ट हैं। वह आलसी नहीं होता, सदैव काम काज भजन पूजन में निरत रहता है। इससे शरीर में गंदगी कम इकट्ठी होती है, किंतु फिर भी मास में दो उपवास अतीव आवश्यक है। अनेक व्यक्ति यह समझते हैं कि उपवास प्रारंभ करने से पूर्व खूब भोजन किया जाए और उपवास तोड़ने पर फलाहार के साथ साथ मिठाई रबड़ी इत्यादि गरिष्ठ पदार्थ लिए जाए। यह धारणा नितांत मूर्खतापूर्ण है। जब आप कोष्ठ शुद्धि अथवा आत्मशुद्धि की निमित्त उपवास करते हैं तो भोजन ठूंसने से क्या लाभ। उपवास करने का मुख्य आशय तो इंद्रियों की प्रबलता एवं चंचलता नष्ट करना है। अतः भोजन खान पान के बखेड़े से दूर रहकर ब्रह्मचारी को अपना अधिकांश समय आत्मचिंतन में लगाना चाहिए। किसी ग्रंथ का अध्ययन करें, साधु महात्माओं का सत्संग करें या स्वास्थ्य रक्षा के लिए किसी रमणीय प्राकृतिक स्थान में टहलें। सिनेमा, ताश, शतरंज या नाच गाने में व्यर्थ समय नष्ट न करें। उपवास के समय मानसिक स्थिति शांत धर्मरत रहनी चाहिए। यदि ब्रह्मचारी किसी भय एवं चिंता के कारण उपवास नहीं कर सकता तो उपवास न करना ही उत्तम है। उपवास के समय चित्तवृत्ति उच्च विषयों पर एकाग्र करना चाहिए, अपनी शक्तियों का कम से कम क्षय करना चाहिए। साधारण उपवास में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए। प्यास के अनुसार पानी की मात्रा में न्यूनाधिक परिवर्तन करना चाहिए। निर्जल उपवास शरीर की गंदगी को बहुत तेजी से निकालता है, किंतु यह अपेक्षाकृत कठिन है। जल का प्रयोग अनेक दृष्टियों से उत्तम है। उपवास के साथ प्राणायाम, कसरत, मालिश, धूप से स्वास्थ्य सुधारना चाहिए। प्राणायाम किया कीजिए। मन तथा इंद्रियों को पवित्र व स्थिर करने के लिए प्राणायाम अद्वितीय है। प्राणायाम से रोगी भी निरोगी और पतित व्यक्ति भी ब्रह्मचारी बन सकता है। मनुस्मृति में लिखा है, जैसे अग्नि में तपाने से स्वर्ण आदि धातुओं का मल नष्ट होकर शुद्ध हो जाता है, वैसे ही प्राणायाम करने से मन आदि इंद्रियों के दोष क्षीण होकर निर्मल हो जाते हैं। प्राणायाम से मन की अवस्था शांत और स्थिर हो जाती है और चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। इस अवस्था में ब्रह्मचारी को जो आनंद होता है वह अवर्णनीय है। यदि आप ब्रह्मचर्य स्थिर रखना चाहते हो तो प्राणों पर काबू करने के लिए प्राणायाम अवश्य कीजिए। प्राणायाम से अनेक लाभ हैं। मन और चित्त की वृत्ति का निरोध होकर ज्ञान प्राप्त होता है, आयुष्य की वृद्धि होती है, सूक्ष्म और स्थूल दोनों प्रकार के शरीरों का विकास होता है, इंद्रियों पर बहुत शीघ्र विजय प्राप्त होती है, वीर्य ऊर्ध्वगामी और अमोघ हो जाता है, धारणा शक्ति का विकास, दिव्य बुद्धि की प्राप्ति और विषय वासना का नाश होता है, शारीरिक विकार दूर होकर मन हल्का हो जाता है। प्राणायाम तीन प्रकार का होता है, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक अर्थात शरीर में शुद्ध वायु पूर्ण रूप से भरना। शुद्ध वायु के भरने से रक्त पवित्र होता है, प्राणवायु से नवजीवन प्राप्त होता है। कुंभक का अर्थ है फेफड़ों में भरी हुई वायु को स्थिर रखना और रेचक का अभिप्राय है हवा को धीरे धीरे बाहर निकालना। इन तीनों क्रियाओं का मतलब यही है कि हम श्वास प्रश्वास की क्रियाओं को करें, फेफड़ों में धीरे धीरे हवा भरें, उसे कुछ देर तक अंदर रखें, स्थिर रखें और तत्पश्चात धीरे धीरे बाहर निकालें। इन क्रियाओं से दूषित वायु बाहर निकलेगी और शुद्ध वायु से फेफड़े अपना कार्य अच्छी तरह कर सकेंगे। नासिका के एक स्वर से वायु भरना और दूसरे से निकालना भी अत्युत्तम है। पूरक, कुंभक और रेचक तीनों मिलकर प्राणायाम हुआ। यह क्रिया बार बार होनी चाहिए। प्राणायाम से आत्मबल बढ़ता है और विचारों से सात्विक भावनाएं उठने लगती हैं, मस्तिष्क की थकान दूर हो जाती है, आत्मज्योति जागृत होने लगती है और वीर्य शुद्ध बनता है। प्राणायाम से ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है। अतः दीर्घायु, निरोग ब्रह्मचारी और सामर्थ्य संपन्न बनने के लिए प्राणायाम की प्रचंड शक्ति को अपनाइए। उद्योगी बनिए। आलस्य जीवन का मैल है। काम में आने वाला औजार चमकदार रहता और अधिक चलता है। उसी भांति जो ब्रह्मचारी सदा उद्योग में प्रवृत्त रहता है, व्यर्थ गप शप में, निंदा पर छिद्रान्वेषण में अपना समय नहीं लगाता, वह काम वासना को दमन कर सकता है। ऐसे उद्योगी व्यक्ति के पास वासना पूर्ति के लिए समय ही कहाँ। आलसी व्यक्ति को कामदेव पटक पटक कर मारता है, किंतु जो सदा सुकर्मों में प्रवृत्त रहता है, आलस्य को मार भगाता है, वह निरंतर प्रगतिवान रहता है। निरुद्योगी पुरुष कभी ब्रह्मचर्य धारण नहीं कर सकता, सततोद्योगी अपनी कांति सुगंध से सबका मन मोह सकता है। उद्योग से नीच वासनाएं स्वयं दब जाती हैं। ब्रह्मचारियों, अपने जीवन का एक पल भी व्यर्थ बर्बाद न करो, कुछ न करते रहो। आलसी मस्तिष्क शैतान का पिटारा बन जाता है। उद्योगी के पास आलस्य नहीं फटक सकता, वह जगत का कल्याण भी कर सकता है, साथ ही समाज सेवा, जनता में धर्म प्रचार भी पर्याप्त रूप से कर सकता है। वह निकम्मा न रहे, अपने जीवन के प्रत्येक पल का सदुपयोग करे, उद्योगी बने।